ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर मंत्र दिया है, ओम शांति। जब हम पहले पहले बाबा के पास आते हैं तो आते ही बाबा हम बच्चों को अपना परिचय देते हैं, और परिचय में भी सबसे पहले यही बताते हैं कि आप सब शांत स्वरूप आत्माएं हैं। तो पहले पहले हमारा परिचय हमारी शांति से होता है। यहाँ शांतिवन में भी सारे दिन में हर घंटे में एक मिनट एक गीत बजता है। आपको याद आ गया होगा, गीत की लाइन है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। तो हम सब शांत स्वरूप आत्माएं शांति की शक्ति से शांति का संसार बनाने के निमित्त हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे शांति की शक्ति को जमा करो। जैसे लौकिक दुनिया में लोग धन की शक्ति को जमा करते हैं, इसलिए कि जब मुसीबत आए तो जमा किया हुआ धन काम आए। और ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे आगे आगे ऐसी परिस्थितियां आएंगी, आ भी गई हैं, कि लोग शांति के एक पल के लिए तरसेंगे और आपसे शांति की भीख मांगने आएंगे। तो आप दाता बच्चों के पास शांति का इतना स्टॉक होना चाहिए। हम देखते हैं कि कोई भी चीज थोड़ी थोड़ी भी इकट्ठी करते हैं तो वो शक्ति में बदल जाती है। जैसे एक बूंद कोई बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन बूंद 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 इकट्ठी होते होते कितना बड़ा सागर बन जाता है। इसी तरह एक एक पैसे की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उसको जोड़ लिया जाए तो बहुत धन बन जाता है। एक अकेले आदमी की भी कोई कीमत खास नहीं होती, लेकिन जब बहुत सारे लोग संगठित हो जाते हैं तो असंभव काम को भी संभव कर लेते हैं। ऐसे ही बाबा कहती हैं, अगर एक एक पल शांति का एकत्रित किया जाए तो हमारे भीतर बहुत शांति की शक्ति इकट्ठी हो सकती है। गुलजार दादी जी कहती हैं कि जैसे आप पैसे के लिए गुल्लक बनाते हो ना, ऐसे शांति के लिए भी एक गुल्लक बनाओ। जब भी आपके पास थोड़ा भी समय हो तो योग का अभ्यास करो, शांति की स्थिति का अभ्यास करो और उस गुल्लक में डाल दो कि आज मैंने 5 मिनट अभ्यास किया, अभी मैंने 2 मिनट अभ्यास किया, अभी मैंने 3 मिनट अभ्यास किया। और फिर आप सारा दिन में देखेंगे उस गुल्लक में कितने घंटे शांति के जमा हुए। और अगर आप महीने में देखें तो बहुत सारे घंटे जमा मिलेंगे। तो ये हमारी सच्ची पूंजी है, क्योंकि बाबा कहते हैं, बच्चे शांति आपका स्वधर्म भी है और शांति बाप से प्राप्त वर्षा भी है। अब लौकिक दुनिया में बच्चे को वर्षे की कितनी कीमत होती है? मान लीजिए एक पिता का 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा है और उसके 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों के मन में क्या रहता है? हर एक समझेगा, मैं 50 लाख का मालिक हूं। अब आप एक बच्चे को कहो कि आप 50 की जगह 49 ले लो, तो वो मानेगा क्या? कहेगा क्यों, मेरा तो 50 पर हक है, मैं तो 50 लाख लूंगा, और अगर नहीं मिलेगा तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। तो लौकिक बच्चों का लौकिक वर्षे के प्रति कितना मोह होता है, उसको वो छोड़ते नहीं है, कुछ भी हो जाए लेके ही मानेंगे। तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों को भी कहते हैं, शांति आपका वर्षा है, तो आपको भी तो लौकिक बच्चों की तरह से बार बार ये सोचना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी शांति को नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वर्षा है, बाबा से प्राप्त सच्ची पूंजी है। चाहे कोई कुछ भी करे, चाहे कितने भी चोर इस शांति को चोरी करने आए, लेकिन मैं अपनी शांति को छोड़ूंगा नहीं। तो बार बार हमको ये पक्का करना है। छोटी सी बात आई और हमने शांति छोड़ दी, कोई बात सुनी हमने शांति छोड़ दी, कोई परिस्थिति आई और हमने शांति छोड़ दी। तो इससे तो लौकिक बच्चे अच्छे, जिन्हें अपने पिता के वर्षे की इतनी कदर है, और हमें इतने ऊंचे बाबा ने इतनी बढ़िया चीज दी और उसको हम संभाल भी नहीं सकते, छोटी छोटी बातों में उसको छोड़ देते और फिर कहते हैं बाबा शांति। लौकिक दुनिया में तो लोग शांति के लिए भटकते हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं, लौकिक दुनिया में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। वो एक छोटी सी बात सुनाते हैं कि एक बार एक अमीर आदमी ने एक गरीब को 50 एकड़ जमीन दी और बोला लो भाई तुम इस पे खेती करो। तो गरीब आदमी को लगा अरे भाई मेरी तो लॉटरी निकल आई, कहां 50 एकड़ जमीन और कहां मैं, बहुत खुश हो गया। लेकिन उसके पास हल और बैल तो था नहीं, तो अमीर आदमी ने कहा ये ले हल बैल भी ले ले। तो उसने कहा ये तो बड़े दिल वाला बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन मेरे पास तो बीज भी नहीं है, खाद भी नहीं है। तो उस अमीर आदमी ने कहा ये लो बीज और खाद भी ले लो। फिर उसने कहा ये तो ठीक है पर मैं पानी कहाँ से दूंगा खेती में। तो उस आदमी ने कहा ये लो पानी का प्रबंध भी मैं करके देता हूँ, जमीन भी तुम्हारी, हल बैल भी तुम्हारा, बीज और खाद भी तुम्हारी, पानी भी तुम्हारा, और सदा ये तुम्हारा ही रहेगा। तो गरीब आदमी तो इतना खुश हो गया, ये भगवान ये जुग जुग जिए, इसने मेरे ऊपर बड़ी दया की। फिर वो धीरे से कान में कहता है कि ये सब कुछ तो तेरा ही रहेगा लेकिन जो फसल होगी ना वो सारी मेरी होगी। तो बेचारे ने कहा ये क्या, फिर मैं इनको रख के क्या करूंगा। तो ये माया की नगरी है ना, माया भी यही कहती है कि ये मकान भी आपका, ये दुकान भी आपकी, ये जेवर भी आपका, जमीन भी आपकी, और ये दौलत धन ये सब चीजें आपकी। तो हम भी खुश हो जाते हैं, वाह घर बार दौलत पैसा सब कुछ है। फिर माया कान में आके क्या कहती है, ये सब तुम्हारा ही है और तुम्हारा ही रहेगा पर शांति तुमको नहीं मिलेगी। तो लौकिक दुनिया में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। और वो शांति का खजाना बाबा ने अपने बच्चों को दिया है। और अगर बच्चे भी छोटी छोटी बातों में शांति को छोड़ दें, छोटी छोटी बातों में अशांत हो जाएं, छोटी छोटी बातों में अपने स्वधर्म से उतर जाएं, अपनी सीट से नीचे आ जाएं, तो बाबा क्या सोचता होगा कि दुनिया के लोग तो शांति के लिए तरस रहे हैं और मेरे बच्चों को मैंने इतना खजाना दिया और फिर भी उस खजाने को लापरवाही में छोड़ देते हैं, भुला देते हैं। तो कुछ भी हो जाए हमें अपने शांति स्वधर्म को छोड़ना नहीं है। इसके लिए बाबा एक बात हमेशा सुनाते हैं, धरत परिये धर्म न छोड़िए। लौकिक दुनिया में जो योद्धे होते हैं, क्षत्रिय लोग जो अपने आप को युद्ध करने वाले समझते हैं। उनका ये महामंत्र होता था। वो ये कहते थे कि युद्ध के मैदान में चाहे हमको मरना पड़े, घायल होके गिरना पड़े, लेकिन हम अपने लड़ने के धर्म को नहीं छोड़ेंगे। तो वो तो लौकिक धर्म हो गया, दैहिक धर्म हो गया, लेकिन हमारा तो लौकिक धर्म नहीं है, दैहिक धर्म नहीं है, हमारा तो असली आत्मिक अविनाशी धर्म है। और इस धर्म के लिए बाबा कहते हैं, धरत परिये धर्म न छोड़िए, कुछ भी हो जाए लेकिन अपने शांति स्वधर्म को नहीं छोड़िए। बाबा ने एक मुरली चलाई थी जिसमें बाबा ने कहा था, देखो वर्तमान समय में तीन सत्ताएं दुनिया में काम कर रही हैं, एक है धर्म सत्ता, दूसरी है राज्य सत्ता और तीसरी है विज्ञान की सत्ता। लेकिन बाबा ने कहा इन तीनों के पास शांति की शक्ति नहीं, इसलिए तीनों डामाडोल। अगर इनमें भी शांति की शक्ति आ जाए तो ये बहुत शक्तिशाली बन जाए। तो बाबा ने कहा था कि जैसे विज्ञान की सत्ता है, अब अगर देखा जाए तो विज्ञान को जन्म देने वाली शांति की शक्ति है, लेकिन विज्ञान ने क्या किया, शांति को ही खत्म कर दिया। विज्ञान की बनाई चीजें लोगों को अशांत कर रही हैं, विज्ञान को जन्म देने वाले वैज्ञानिक भी अशांत, जबकि कोई भी आविष्कार होता है तो बिना शांति के हो ही नहीं सकता। जैसे आइंस्टाइन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उनके जीवन की एक घटना सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार उन्होंने अपने एक मित्र को भोजन के लिए निमंत्रण दिया और वो अपनी लैब में बैठे किसी शोध के ऊपर चिंतन कर रहे थे। इतने मशगूल थे चिंतन में, न उन्हें बाह्य जगत का पता, ना उनकी इंद्रियों में कोई हलचल, ना उनके मन में कोई विचार, बस अपनी शोध में पूरी तरह खोए हुए, न समय का भान, न भूख का भान, एकदम जैसे डिटैच। बाबा की याद में दो मिनट ओम शांति। तो हम शांति की शक्ति की बात कर रहे थे। आइंस्टाइन ने एक बार अपने एक मित्र को भोजन का निमंत्रण दिया और वो किसी शोध कार्य में इतने मशगूल थे, उनको बाह्य जगत का जैसे कोई भान ही नहीं था। तो मित्र भोजन करने के लिए आया और उसने देखा कि आइंस्टाइन तो पूरी तरह से खोया हुआ है, इसलिए इसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, तो मैं अपने आप भोजन लेकर के कर लेता हूँ। तो भोजन डिश उठाया, भोजन किया और फिर सोचा कि इनको पता कैसे पड़ेगा कि मैंने भोजन कर लिया और मैं आया था, तो मैं अपनी थाली को यही टेबल पे छोड़ देता हूँ ताकि थाली देख के इनको लगेगा कि मेरा मित्र आया, भोजन करके चला गया। कुछ समय के बाद आइंस्टाइन को जैसे थोड़ा स्थूल दुनिया का भान हुआ और वो अपनी सीट से उठे, उनको ख्याल आया कि मैं भोजन करूं, और जैसे ही टेबल के नजदीक आए वहां एक थाली रखी देखी, तो उनको लगा कि ये थाली मेरी ही तो रखी हुई है, मैं शायद भोजन कर चुका हूं, मैं भूल गया हूं, और ये सोच करके वापस अपनी लैब में जाकर के बैठ गए। तो जिन्होंने चीजें इजाद की, कितनी गहन अंतर्मुखी अवस्था थी उनकी। तो शोध तो शांति की शक्ति से हुई, लेकिन जब चीजें इजाद हो गई तो उन साधनों ने हमारी शांति की शक्ति को खो दिया। फिर वो बनी हुई चीजें हमारे पे हावी हो गई, हम उनके गुलाम हो गए, साधना भूल गए। और इसलिए विज्ञान के साधनों की चकाचौंध में आज मनुष्य इतना भ्रमित है कि शांति तक उसकी पहुंच ही नहीं। दूसरा, बाबा ने कहा धर्म की सत्ता को देखिए। अब धर्म के नाम पे नित नए नए संप्रदाय कुछ कुछ बनते तो रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे शांति की शक्ति के अभाव में धर्मों में भी आपस में कंपटीशन है, स्पर्धा है, कर्मकांड है बाह्य, लेकिन आंतरिक धारणा गुण वो नहीं है। और इसलिए जो धर्म लोगों को शांति देता था, आज लोग यही कहते हैं कि धर्म ने ही सारे झगड़े पैदा किए, और इसलिए लोग धर्म के नाम से जैसे नफरत मानते हैं, धर्म के नाम से लोग बेमुख हो रहे हैं, धार्मिक कार्यों के बारे में लोगों की रुचि खत्म हो गई है, वो यही समझते हैं कि ये धर्मी झगड़े करवाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे शांति की शक्ति से धर्म का जो रूप बनता है वो बड़ा कल्याणकारी है, बड़ा आकर्षक है। कोई कोई ऐसे धार्मिक लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी छाप लोगों पे छोड़ी, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन की बहुत बातें सुनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जब उनसे पहली बार मिले, बहुत उनसे प्रभावित हुए, और एक बार उन्होंने उनकी बैठने की जो गद्दी थी उसके नीचे एक रुपया रख दिया। तो रामकृष्ण परमहंस जब बैठने लगे, बैठे, तो उन्हें बड़ी बेचैनी महसूस हुई, और उन्होंने उस गद्दी को उठा करके उस रुपए को निकाला, और फिर विवेकानंद को कहा कि ठीक है रे, गुरु को अच्छी तरह से परख लेना चाहिए। उनको ये भी पता पड़ गया कि रुपया रखने वाला यही है। तो कहती हैं कि वो कंचन से सर्वथा अलिप्त थे, लेकिन ऐसे धर्म के क्षेत्र में कितने लोग हैं? आज तो देखो धर्म के नाम पर साधनों की, चीजों की, नाम मान शान की उनकी होड़ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे समय में जब सबको शांति देने वाली धर्म सत्ता में भी शांति नहीं रही, तो लोग आपके पास आएंगे, आपसे शांति मांगेंगे, तो आपके पास कितना शांति का स्टॉक होना चाहिए। और तीसरी शक्ति बाबा कहती हैं वो है राज्य की शक्ति। तो राज्य भी शांति स्थापना के निमित्त माना जाता है। राजा का कार्य क्या है? लोगों की सुख शांति का ख्याल रखे, उनके जान माल की सुरक्षा करे। लेकिन आज की राजनीति कैसी है? आज की राज्य शक्ति कैसी है? बाबा कहते हैं रुन्ने के पानी मिसल। दिखावा बहुत है लेकिन अंदर न कोई सुरक्षित है और न ही किसी को शांति है, क्योंकि जो राज्य करने के निमित्त है वही अशांत, उनके मन में स्थिरता नहीं है। तो राजा के मन में नहीं है तो प्रजा के मन में कहां से आएगी? कहती हैं सच्चा राजा वही होता है जिसका मन सन्यासी जैसा होता है। रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब बाली की हत्या हो गई और श्री राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाने के लिए बुलवाया, तो सुग्रीव ने कहा हे राम, भाई की हत्या से रंगे हुए सिंहासन पर मैं नहीं बैठना चाहता। मेरा मन कर रहा है मैं भगवा कपड़े पहनूं, सन्यासी बनूं, जंगल में जाकर के भगवान का नाम लूं, मेरे को ये राज्य, ये वैभव, ये ऐश्वर्य, ये सब कुछ नहीं चाहिए। तब श्री राम ने कहा था, सुग्रीव, सच्चा राजा वही होता है जिसके मन में राज्य की इच्छा नहीं होती, लिप्सा नहीं होती, जो भोग और वैभवों से आकर्षित नहीं होता, जिसका मन संन्यस्त होता है, जो उपराम होता है और जो वास्तव में ही ईश्वर की आराधना करना चाहता है। तो तुम्हारी जो मनोभूमि है वो बहुत अच्छी है, राजा बनने लायक है। तुम इसी मनोभूमि से गद्दी पर निमित मात्र बैठो, संन्यस्त मन से राज सिंहासन पर बैठो, तो तुम प्रजा प्रिय बनोगे, न्यायप्रिय बनोगे। तो वास्तव में तो राज्य की शक्ति वो है जिसमें राजा उपराम है, लेकिन वर्तमान समय भोग वैभव पदार्थों का आकर्षण जिसने राजाओं को भी अशांत कर रखा है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, राज्य शक्ति भी अशांत है, तो ऐसे समय में आपकी शांति उनको भी आकर्षित करेगी और आपको लोग ऑफर करेंगे कि आप ही राजा बन जाओ और आप ही दुनिया में शांति का राज्य स्थापन करो। तो आप बच्चों को, उनको भी शांति देनी पड़ेगी। तो वर्तमान संसार में जहां चारों तरफ अशांति का अंधकार है, हम बाबा के बच्चे शांति के मास्टर सूर्य, शांति के मास्टर चंद्रमा बन करके लोगों को शांति देने के निमित्त हैं। बाबा ने ये भी कहा है कि अंतिम समय में एक सेकंड में बाबा से टचिंग लेने की परिस्थिति आएगी, और बाबा ने यह भी कहा है कि उसके लिए आप बच्चों का मन, बुद्धि क्लीन और क्लियर चाहिए। और बाबा ने यह भी कहा है कि केवल एक सेकंड का ही पेपर होगा, अंतिम पेपर। तो उस समय जिसने बहुत लंबे समय से शांति की शक्ति को एकत्रित किया होगा, जिसका मन हलचल में नहीं होगा, परिस्थितियों को देख के भी जो अचल रहेगा, चारों तरफ हाहाकार और मारामारी में भी जो अचल अडोल होगा, तो उस समय वो बाबा से जो भी बात कैच करना चाहेगा कैच कर पाएगा। जैसे रेडियो स्टेशन से समाचार आ रहा हो और हमारे रेडियो का ठीक ना हो सिस्टम, तो बहुत आवाज होती है और हम ठीक से आवाज सुन नहीं पाते हैं। तो बाबा ने कहा, अगर आपका मन हलचल में होगा और बाबा आपको कोई आदेश निर्देश देगा तो आप सुन ही नहीं सकेंगे, उस प्रमाण कार्य नहीं कर सकेंगे और फिर आप अंतिम पेपर में पास भी नहीं हो सकेंगे। इसलिए ऐसा अभ्यास करो अभी से कि चाहे कुछ भी होता रहे लेकिन हमारा मन अचल, स्थिर और निर्भय रहे हर परिस्थिति में। बाबा ने कहा, वर्तमान समय भी ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं और आगे आगे तो ये बहुत आएंगी। अगर हम बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के जीवन को देखें और मम्मा के जीवन को देखें, तो बाबा ने कितनी शांति की शक्ति जमा की। आज भी हम बाबा के कमरे में जाते हैं, कितने वर्ष बीत गए, कितनी आत्माओं ने उस कमरे से शांति का वरदान पाया है और अभी भी उस कमरे में शांति के कितने वाइब्रेशन है। कोई कैसी भी अशांत आत्मा, अनजान आत्मा, उसके सामने जाते ही, पांव रखते ही ऐसी महसूस करती है कि जैसे कोई शांति का फव्वारा मेरे ऊपर गिर रहा है, जैसे किसी ने मुझे शांति के कुंड में डुबो दिया है। किसी का मन नहीं करता बोलने को, ऑटोमेटिक अंदर से जैसे भावना आती है कि मैं यहाँ चुप बैठूं। और कईयों को तो बाबा से बहुत कुछ अनुभव भी मिलता है, बाबा ने मुझे ऐसे कहा या मुझे बाबा से ऐसी अनुभूति हुई, और वो जीवन में फिर साकार भी होती है। तो बाबा की शांति की शक्ति आज भी कितनी कमाल कर रही है। तो बाबा कहते हैं जब एक बाबा इतनी कमाल कर सकते हैं तो हम इतने सारे बच्चे मिलकर के सारी दुनिया में कितने शांति के वाइब्रेशन फैला सकते हैं। और बाबा ने शांति की शक्ति के कितने प्रयोग किए। बाबा कहते हैं बच्चे योग के प्रयोग करो। बाबा ने अपने जीवन में बहुत प्रयोग किए। जब कोई बच्चा बीमार होता था तो बाबा शांति की शक्ति का प्रयोग करते थे। और जैसे समाचार आता था कि इतनी बीमारी है, बच्चे को नींद नहीं आई, और बाबा शांति की शक्ति का प्रयोग करते थे तो अगले दिन समाचार आता था कि बाबा मुझे बहुत अच्छी नींद आई। इसी तरह से बहुत बांधेलियां मारे खाती थी, बाबा को पुकारती थी तो इतनी दूर बैठी बांधेलियों की आवाजें बाबा को स्पष्ट सुनाई देती थी। बाबा की कितनी लाइन क्लियर थी, आत्मा के साथ आत्मा का कितना गहरा कनेक्शन था, जो कितनी भी दूर बैठी आत्मा पुकारे और बाबा उसकी संकल्प को कैच करते थे और फिर उसी अनुसार बाबा उसको सकाश देते थे और मिलती भी थी सकाश। और वो बांधेली आत्माएं फिर अपना अनुभव भी सुनाती थी। ऐसे ही मम्मा ने भी बहुत शांति की शक्ति का अभ्यास किया। उन दिनों लाख लाख की सभा तो नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उन दिनों की सभा में कितनी भी विरोधी आत्माएं होती थी या तामसिक वृत्ति की आत्माएं होती थी, लेकिन जब मम्मा को वो देखते थे, मम्मा की शांति के वाइब्रेशंस उन्हें अनुभव होते थे, तो विरोधी आत्माएं एकदम बदल जाती थी और तामसिक वृत्ति की आत्माएं आकर के तो माफी मांगती थी कि हमको माफ कर दो, हमने ये पाप किया ये पाप किया। उनको मम्मा कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन ऑटोमेटिक जैसे रियलाइजेशन होती थी। तो हमारे मम्मा बाबा ने, हमारी दादियों ने जिस शांति की शक्ति से इतने सफल प्रयोग किए, तो हम बच्चों को भी बाबा के इस शांति कुंड में यहाँ आने का मौका मिला तो हम यहाँ की शांति को और बढ़ाएं और अपने भीतर भी इतनी शांति भर के जाएं कि अपने लौकिक संसार में जाकर के वहां भी उनको दिखाएं कि हम कैसे शांति कुंड से निकल के आए हैं। हमें देख करके वो लोग भी कहें कि आप में से इतनी शांति निकल रही है। लोग तो पानी के कुंड में स्नान करके जाते हैं जब तीर्थों से जाते हैं, लेकिन हम तो शांति के कुंड में स्नान करके जा रहे हैं। हमारा अंग अंग शीतल हो गया है, हर एक इंद्रिय शीतल हो गई है, हमारी वाणी शीतल हो गई है, हमारे कर्मों में शीतलता आ गई है, हमारा व्यवहार शीतल हो गया है। क्योंकि 63 जन्मों से माया ने आत्माओं को बहुत जलाया है। काम की अग्नि, क्रोध की अग्नि, लोभ की अग्नि, मोह की अग्नि, ये सब अग्नियां हैं। और बाबा की जो शांति की शक्ति है ये उस अग्नि को बुझाने के निमित्त है। तो हम बाबा के बच्चे शीतल देव और शीतला देवियां बनकर के इतनी शांति और शीतलता को अपने अंदर भर के अपने उस गुण से बाबा को प्रत्यक्ष करें, ऐसा अपने को लक्ष्य रखना है। बाबा कहते हैं बच्चे शांति चाहिए, साकार मुरली में बाबा कहते हैं, तो शांति धाम में आ जाओ। क्योंकि ये तो आवाजों की दुनिया है, हलचल की दुनिया है, ये रंगमंच है। तो रंगमंच पर कभी परफेक्ट पीस नहीं होती है, क्योंकि रंगमंच पर तो ड्रामा चलता रहता है, हलचल होती रहती। तो बाबा कहते हैं बच्चे शांति मिलेगी शांति धाम में। तो बाबा हम बच्चों को कहती हैं कर्म करो और मेरे पास शांति धाम में आ जाओ। कितना बाबा का हम बच्चों को खुला निमंत्रण है, जब मर्जी आओ, जितने समय आकर के रहो। कोई रोक टोक नहीं है, जहाँ अखंड शांति है, जहाँ आत्मा पूर्ण स्वतंत्र है, जहाँ आत्मा अपने अंदर जितनी चाहे शांति भर सकती है। हमारा अपना देश है, हम हैं शांति धाम के रहने वाले। पिता हमारा शांति का सागर, हम आत्माएं शांत स्वरूप, शांति हमारा धर्म, शांति का देश हमारा देश। तो जब बार बार हम ये अभ्यास करते हैं, अभी अभी शांति धाम में, अभी अभी कर्म में, अभी अभी शांति धाम में, अभी अभी कर्म में, तो जैसे आना और जाना हमारे लिए नेचुरल हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये भी आप बच्चों का खेल है। जैसे छोटे बच्चे को कई बार कहती हैं कि जाओ उस दीवार को छू करके आओ, उस निशान को हाथ लगा करके आओ, तो ऐसे ही बाबा ने भी हम बच्चों को खेल दिया है। ये संगम युग का बड़ा मजे का खेल है, इसमें कोई थकान नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे परम धाम को छू के आओ, कभी सूक्ष्म वतन को छू के आओ, कभी बाबा को गुड मॉर्निंग करो, कभी बाबा को गुड इवनिंग करो, कभी बाबा से हाथ मिलाओ, जाओ और आओ, जाओ और आओ। तो इस जाने आने में क्या होगा, अशरीरी बनने की हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, देह का अभिमान जो बहुत टाइट है वो भी लूज हो जाएगा। जैसे इलास्टिक को बार बार खींचते हैं तो वो लूज हो जाता है, पहले तो वो बहुत टाइट होता है, लेकिन जब बार बार खींचते हैं तो कहते हैं भाई इलास्टिक ढीला हो गया। तो इसी तरह से देह का अभिमान लूज होते होते, ये देह रूपी ड्रेस लूज होते होते एकदम लूज हो जाएगी, और फिर आत्मा को इसमें से निकलना बहुत सरल हो जाएगा। तो बाबा कहती हैं बच्चे बार बार अभी अभी कर्म किया, अभी अभी इंद्रियों को सिकोड़ लिया, अभी अभी कर्म किया, अभी अभी देह से न्यारे हो गए, ये बार बार अभ्यास करो। ये संगम युग का खेल है, खेलते रहो। बाबा ने हम छोटे छोटे बच्चों को ये खेल दिया है। और बाबा ये भी कहती हैं कि परम धाम आने के लिए 3 बिंदु लगाने का पक्का अभ्यास करो। पहला बिंदु कौन सा है, मैं आत्मा बिंदु। बाबा कहते हैं जब आप ये बिंदु लगाओगे ना तो देह के भान से परे चले जाओगे। फिर दूसरा बिंदु कौन सा है, मेरे सर्व संबंध बिंदु बाबा से हैं, एक बिंदु मेरा सर्व संबंधी है। तो जब ये वाला बिंदु लगाएंगे तो जो लौकिक संबंधों में बुद्धि भटकती है वो खत्म हो जाएगी। और तीसरा बिंदु बाबा ने बताया ड्रामा का बिंदु, अब तक जो कुछ बीता उसको बिंदु लगाओ। तो बाबा कहते हैं बच्चे पास्ट की बातों में बुद्धि बहुत भटकती है, 20 साल पहले ये हुआ था, 10 साल पहले ये हुआ था। बाबा कहते हैं बच्चे कल की बात भी याद नहीं रखनी, 1 मिनट पहले जो बीता उसको भी याद नहीं रखना है, क्योंकि ड्रामा है ना। तो जैसे ड्रामा देखते हैं, कोई पिछले दृश्य को याद करने लगे तो अगले वाला दृश्य तो निकल जाएगा। तो बाबा कहते हैं सामने नज़र रखो, वर्तमान में नज़र रखो, बीते हुए को मत देखो। और अगर बीता हुआ देखना है ना तो सतयुग को याद करो, सतयुग में हम क्या थे। बीती हुई बातों में भी अच्छी वाली बातें याद करो। अगर बीता हुआ बहुत याद आता है तो ये याद करो कि सतयुग में मैं देवता था, 16 क्लास संपूर्ण था। और फिर ये याद करो कि आजकल मेरी यादगार मंदिर में है। बाकी ये द्वापर और कलयुग का जो है, बाबा कहते हैं ये मध्यकाल, इसको याद मत करो। तो जब बिंदु लगाती हैं लौकिक दुनिया में भी तो क्या होता है, 1 के आगे बिंदु लगाओ 10, 10 के आगे बिंदु लगाओ 100, 100 के आगे बिंदु लगाओ 1000। बिंदु लगाते जाओ तो क्या होता है, संख्या बढ़ती जाती है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आपको अमीर बनना है ना सतयुग में, तो ये बिंदु लगाते जाओ, जो कुछ बीता बिंदु, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाबा बिंदु। तो तो बार बार बिंदु लगाने की प्रैक्टिस करेंगे ना तो परम धाम आना जाना सरल हो जाएगा, बुद्धि एकाग्र चित्त हो जाएगी। और बाबा ये भी कहती हैं परम धाम टॉप का स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान है। तो बाबा भी ऊंचे से ऊंचा, हमारा घर भी ऊंचे से ऊंचा, और हमारी उड़ान भी ऊंचे से ऊंची, हमारी स्वमान की सीट भी ऊंचे से ऊंची। तो ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे ऊंची स्थिति में रहते हैं, नीचे नहीं आते। और बाबा ये भी कहते हैं जैसे पंछी डाली पर या जमीन पर कब आता है, जब उसको भूख लगती है दाना चुगने आता है, फिर दाना चुग के क्या करता है, वापस जाके उड़ जाता है। अगर वो नीचे ही रहे तो क्या होगा, कभी बिल्ली आएगी, कभी कुत्ता आएगा, है ना। तो पंछी को कभी बिल्ली पकड़ेगी, कभी कुत्ता पकड़ेगा। लेकिन अगर पंछी दाना चुगे और उड़ जाए तो माया बिल्ली आ नहीं सकती। तो बाबा कहती हैं ये माया क्यों आती है, जब आप बहुत स्थूल में रहते हैं, बहुत देह के भान में रहते हैं, तो कभी चूहा आया, कभी बिल्ली आई, एक को निकाला दूसरा आया, दूसरे को निकाला तीसरा आया, फिर कहते हैं बाबा ये समस्या आ गई, फिर वो निकलती है, फिर बाबा ये समस्या आ गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे उड़ते पंछी बनो, दाना चुगने आओ, जितना कर्म जरूरी है उतना करो और उसके बाद फिर ऊपर चले जाओ। तो उड़ने वाले पंछी को कोई पकड़ सकता है क्या, उड़ने वाले पंछी को तो तीर मारना भी मुश्किल, पकड़ना भी मुश्किल। तो बाबा कहती हैं उड़ो और उड़ाओ, और माया बिल्ली की पहुंच से दूर रहो, माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तो हम सबको ने उड़ते पंछी या बैठने वाले जमीन पर रहने वाले पंछी, कौन है, उड़ते पंछी है ना, उड़ने वाले, उड़ती कला में जाने वाले, सबको उड़ाने वाले। ओम शांति।